और मैं भगवान का पार्ट पार्सल हूँ, उनका अंश हूँ, मेरा भी स्वरूप है, सब उनसे प्रेम हो सकता है। इसलिए ये मैं एक शुद्ध है एक अशुद्ध है, यहाँ वाला अशुद्ध है वहाँ वाला जो है शुद्ध है। ये तो प्रेम अकेले नहीं होता है, यदि हरि हैं तब अकेले प्रेम नहीं होता, किससे प्रेम करें, और यदि मैं ही हूँ केवल तो भी प्रेम नहीं, कुछ होना चाहिए। सेवक से प्रभाव बिन भवन तरई उर्गा, ये तुलसी का सिद्धांत विचार भज हुरान ऐसा, जब मैं था
तब हरि नहीं, हम भाव से है यहाँ ये,
हाँ
जब हम लीन हो गया, जब हम हट गया बीच में से, मैं लीन हो गया उसमें।
लीन मैंने क्या होता है ये थोड़ा सा देखना है, एक पक्षी वन में लीन हो गया या घोंसले में, क्या वो घोंसला बन गया?
हाँ यहाँ तो शायद यही
यहाँ नहीं है, लीन माने क्या होने ये देखने के लिए एक क्लास है, उसमें 10 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, 1000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, और एक लड़का क्लास में जब चला गया तो बाहर से वो नहीं कोई दिखता है, तो वो लड़कों में जाकर के लीन हो गया, तो इसका मतलब क्या, जो वो लड़का बन गया ना टीचर बन गया ना बेंच बन गया ना टेबल बन गया ना क्या रहा, उसका व्यक्तित्व रहा कि नहीं?
यहाँ तो यही तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति तो नहीं रहा, अब तो मैं, हाँ अब मैं उसमें लीन हो गया, एक हो गया उससे।
अच्छा, एक को तो मन बतलाया, ये एक किसको कहते हैं, एक है ही नहीं है कुछ,
इसीलिए शायद अद्वैत का शब्द प्रयोग किया है,
और द्वैत में भी द्वैत है, और द्वैत कोई शब्द अपना नहीं है, इसमें द्वैत है,
तो इसीलिए नेति नेति कहा है,
नेति नेति मैंने इसलिए कहा कि उसको जब देखा नहीं तो ये ब्रह्म है नहीं, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है नहीं, ये न इति इति आ गया, किंतु इति तो जरूर कहीं होगा, वो क्या है,
जो बच गया शेष वही है,
वह है क्या है, कुछ है तो
स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक बढ़िया बढ़िया
जानते
थे कि एक लड़की है, कहते हैं कि वो ब्याह के आई है तो अपने पति के घर से वापस, उसका पति भी साथ में आया है, अब उसकी सहेलियां हैं, वो कमरे में बैठे हैं मर्द सब, और वे खिड़की से देख रही हैं, तो पूछती है तुम्हारा पति कौन सा है, इनमें वही जैसे कपड़े पहने हैं सब, तो वो कहती है कि ये नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं,
जो बच गया
बच गया, तो वो ये नहीं कहा उसने कि वो वाला है, उसने कहा ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है।
राम और लक्ष्मण जी जा रहे हैं और सीता जी बन में, एक जगह उन लोगों को प्यास लगी, कुएं में बहुत सी स्त्रियां पानी भर रही थी, पुरुष लोग भी थे, बरगद का पेड़ है उसमें काफी लोग वहां पर पानी पी रहे हैं कुएं से, तो ये लोग भी वहां जाकर के पास में बैठ गए, और सीता जी चली गई लड़कियों के पास में, महिलाओं के पास में, और राम लक्ष्मण जी के पास में पुरुष लोग आ गए, तो परस्पर परस्पर पानी पीने के बाद में वार्तालाप होने लगे, जिससे उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पति कौन है, उन्होंने लक्ष्मण जी को देखा,
ये नहीं,
ये मेरे देवर है, ये मेरे देवर माने ये न भूल समझ ले, तो वो समझ गई जैसे वही उनके पति है, अथवा ये नहीं पति मेरे हैं, ऐसे ही सपने सपने। जब मैं
तब हरी नहीं, अब मैं, अब हरी हैं मैं ना है। अब तो हरी हरी है सब जगह, और कुछ है ही नहीं है, दिखता ही नहीं है मुझे, जो मेरा अहम था भाव था,
मैं नहीं,
मैं ना ही, अब हरी है मैं ना ही,
ना ही। देखिए इसमें भी ठीक है, ये गलत नहीं,
हाँ इसमें यही है,
इसमें कि अब मैं सर्वत्र ना ही, मेरा का ये नहीं, किंतु अभी देखने वाला है,
हाँ
वो दिख रहा है हरी, हरी को देख रहा है, किंतु ये जगत का जो शरीर वाला जो मैं था,
ये जो छोटा मैं है, जो अहम है, वो
ये हम जो फॉल्स, ये
फॉल्स ईगो
है, वो ये और आप एक और बारे
जो विकृत हम है,
वहां पर एक बतला रहे थे,
वो था हरि रस पिया जानिए, हरि रस पिया जानिए,
हरि
हरि रस, पिया जानिए
जानिए
जानिए जानिए उतरत नहीं खुमार
है,
उतरत नहीं खुमार
उतरत
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 उतरत उतरत
उतरत
हाँ उतरना
उतरत
नहीं
नहीं
खुमार वो जो नशा है उसका हरी रस का वो ऐसा है उतरता नहीं कभी कोई शराब पी लो कोई नशा पी लो तो उतर जाता है हरी रस पी लिया एक बार जिसने फिर वो नशा कभी उतरता नहीं उतरत नहीं खुमार
ठीक है
मैं ममता घूमत फिरूं अग्नि की तरह से घूम
मैं
ममता
ममता मैं मानने वाला
हाँ मैं ममता घूमत फिरूं नशे में घूमता है ना ही तन की सार अब तन का भी होश नहीं है पहना है नहीं पहना है खाया है नहीं खाया है
तन का सार
ना ही तन की सार
सार
ना ही तन की सार पता नहीं होश नहीं सार में होश ना ही तन की सार
अच्छा आजकल
गबीरा बादल प्रेम का हम पर बरसा आए अंतर भीगी आत्मा हरी भरी बन रहा है
आजकल भारत की क्या स्थिति है
भारत की स्थिति ये है महाराज जी कि ये जो इन्होंने किया विस्फोट एटॉमिक ये तो बड़ा अचानक हुआ किसी को पता नहीं
पता
करने
नहीं
वाले हैं
अमेरिका तो ये स्तंभ है
हाँ स्तंभ है बिल्कुल ये तो स्तंभित है ये तो कह रहे हैं कि हमारा CIA क्या कर रहा था
क्या कर रहा था
और ये 24 घंटा उसको देखते हैं अच्छा उन्होंने ये किया साइंटिस्ट ने भारत के ये हिसाब लगाया कि जब वो सैटेलाइट घूमता है उसको देखता है उसमें कुछ समय ऐसा आता है जब वो उसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं जब आंख बंद होती है उसको वहां नहीं दिखता उसको तो इन्होंने हिसाब लगा लिया कि वो कौन सा समय है जब इसको नहीं दिखता वो सैटेलाइट से उस समय में वो अपना उसमें गए तो कह रहे हैं कि बड़े क्या है ये इन्होंने सब हिसाब लगा के हमको मूर्ख बनाया है ये तो मानते हैं तो खैर जो भी हुआ वो तो हो गया विस्फोट हो गया सब हो गया अब उसके बाद अमेरिका ने पहले तो बड़ा शोर मचाया कि साहब हम आपको हमारा कानून है कि जो ऐसा करेगा उसके विरुद्ध हम सैंक्शन लगाएंगे ये करेंगे वो करेंगे ये जॉर्ज फर्नांडिस हैं एक रक्षा मंत्री
अभी विदेश मंत्री
सुरक्षा मंत्री
रक्षा मंत्री
तो अभी अभी मैं जब दिल्ली में था तो मैं सिक्किम गया था कुछ दिन के लिए
कितने दिन पहले आपके इंडिया
मैं अभी 28 मई को आया
28 मई जिसमें बम विस्फोट हुआ उसमें इंडिया में
हाँ उसमें वहीं था
अच्छा
जब विस्फोट हुआ तब तो ये मैं सिक्किम से आ रहा था वापस तो गुवाहाटी से प्लेन में ये भी चढ़े जॉर्ज फर्नांडिस में तो इनको मैं पुराना जानता हूँ
अच्छा
तो बात रास्ते में इनसे काफी बात हुई तो मैंने इनसे कहा भी कि भाई ये सब जो हुआ है विस्फोट ये क्या होगा अब इसका क्या नहीं होगा अरे भाई 5000 वर्ष पुराना देश है चलता आ रहा है अब भी चलता रहेगा ये क्या कर लेंगे चिंता मत करो ये तरह से बात कर रहे थे तो
क्यों अभी आपके करीब में करीब
हाँ हाँ करीब करीब मेरी आई है ये डॉक्टर लोहिया के चेले हैं नाम तो लोहिया के लोहिया जिसे हमारा बहुत उठना बैठना था ये इनको पता है तो तब से इसलिए हमारा थोड़ा आदर करते हैं उस समय से ये लोहिया जी के शिष्य हैं सब रामनवर लोहिया उनको बनारस से जानता था मैं बनारस में एक काशी विद्यापीठ
मैं जानता
हूँ हाँ हाँ उसके विश्वनाथ शर्मा थे एक रजिस्ट्रार उन्हीं के घर पर लाल बहादुर शास्त्री भी वहीं पढ़े हैं उन्हीं के घर में
तो पढ़े नहीं भी तो लाल बहादुर वहीं पर
हाँ बिल्कुल वहीं पढ़े हैं तो ये लोहिया जी भी उन्हीं के घर के बाहर आंगन वो दलान सामने लॉन जैसा था वहीं चारपाई डाल के पढ़े रहते थे तो हम लोग नए नए पत्रकार थे उन्होंने 57 की बात है ये राज नारायण एक और एक प्रभु नारायण दो चेले थे इनके लोहिया जी के वो इनके पैर ऐसे बातें थे हम लोग दो चार पत्रकार से बैठते थे जाके लोहिया जी भाषण करते थे तो हमारा तब से उनसे संबंध था फिर दिल्ली आ गए वो मेंबर होके पार्लियामेंट के तो मैं भी दिल्ली आ गया तो फिर उनसे रोज ही मिलना होता था तो खैर ये तो बड़ा शोर मचाया इन्होंने विस्फोट के बाद तो ये लोग यही कहते रहे कि कुछ नहीं होगा जो भी होगा हम देखेंगे शायद अच्छा ही होगा लगाने दो जो प्रतिबंध लगाते हैं लेकिन अब वो ये रहा है कि काफी ढील कर दी है पहले इन्होंने कहा कि सरकारी जो लोन वोन थे वो नहीं मिलेंगे लेकिन व्यापार चलेगा
विश्व बैंक को भी उन्होंने
विश्व बैंक को बंद कर दिया था उन्होंने कहा लेकिन व्यापार का कोई रुकावट नहीं है, जो अमेरिकन कंपनियां वहां व्यापार करना चाहें भारत से वो कर सकती हैं। तो इन्होंने हिंदुस्तान में ये कहा कि व्यापार द्वारा और दूसरे जो विदेशी विदेश में भारतीय बस गए हैं जाके, उनकी मदद से और साधनों से हम पूरा कर लेंगे अपनी कमी को, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इन्होंने लोन में भी कुछ दो तीन दिन पहले डील की है। अब इन्होंने कहा कि कुछ तरह के लोन जो है उसमें हम रुकावट नहीं डालेंगे, कुछ विशेष तरह के लोन जो है उसी में रुकावट डालेंगे। तो ये सब चल रहा है। अब इनकी प्रॉब्लम ये है कि अगर ये कहें कि चलिए ठीक है, अब आपने एक्सपोर्ट कर लिया, अब आप आ जाइए हमारे क्लब में शामिल हो जाइए, जो पांच बड़े देश हैं जिन्होंने पास आणविक परमाणु शक्ति है, आप भी उसके हिस्सेदार, तब फिर ये लगेगा कि ये तो इनको पुरस्कृत कर रहे हैं जो किया इन्होंने उसके लिए, और ना करें तो भारत से दुश्मनी भी नहीं डालना चाहते लंबी। तो धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएगा, कुछ होने वाला
पाकिस्तान
नहीं।
की भी ऐसी स्थिति
पाकिस्तान की तो बहुत स्थिति खराब है, उनकी आर्थिक स्थिति तो इतनी खराब है
इस समय
कि वो इसीलिए ये भी डर रहे हैं, भारत भी डर रहा है इस बात से कि अगर आपने इनको और दुखी किया पाकिस्तान को, तो फिर ये मजबूर हो जाएंगे कि कुछ ये जो उनके पास परमाणु रहस्य हैं और जो कुछ तो ये बेच देंगे किसी को, मुसलमान देश को, ईरान को, दूसरों को, पैसे की तंगी की वजह से। तो भारत का भी यही सोचना और ठीक भी है, इनको अधिक ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, अब जो हो गया हो गया, अब तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। तो लेकिन अभी तक रवैया से इनका पाकिस्तान की तरफ यही है कि हम रोक लगाएंगे, सैंक्शन लगाएंगे, ये करेंगे वो,
इनका
अमरीका। तो अब ये अपना अटल जी, वाजपेयी जी और ये पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये जुलाई में मिल रहे हैं वहाँ कोलंबो में।
वहाँ पर
एक कॉन्फ्रेंस है, तो कोलंबो वालों ने कहा है कि विशेष रूप से आपके मिलने के लिए मीटिंग के लिए सब करेंगे, ताकि आप अपने आप से बात करें कश्मीर के बारे में। अब कश्मीर पर कोई समझौता तो हो नहीं सकता। अच्छा, एक ही समझौते की संभावना है और वो ये है कि जो इस समय जहाँ
लाइन है
वही स्वीकार कर लो, उसको स्वीकार कर लो और वार्ता करो, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो सकता है इधर उधर, लेकिन इससे अधिक नहीं। तो इस पर अगर कोई बात समझ में पाकिस्तान की आ गई, कुछ हो गया, तब तो संभव नहीं, तो कश्मीर पर तो कोई समझौता होगा नहीं। अब वो तो कहते हैं कि कश्मीरी हमको हैंड ओवर कर दीजिए, दे दीजिए, ऐसा उठने वाला नहीं। अब अडवाणी साहब जो हैं, ये कश्मीर में गए थे अभी दो तीन दिन पहले,
अब तो वहां के भी पहले तो दूसरा वो मंत्रालय दूसरे के पास में था, अब तो
गृह मंत्री हैं ना,
अब तो इनके पास में
इनके पास आ गया पूरा। तो अब ये कह रहे हैं कि हम वहां पर यही रास्ता ठीक है जो अडवाणी ने अभी किया है, कि वहां पर जो आर्थिक स्थिति है उसको हम सुधारेंगे कश्मीर, और जो लोग बेकार हैं, नौजवान लोग कश्मीरी जो उनके साथ मिल गए हैं, जाके आतंकवादी बन गए हैं, उनको कैसे वापस लाया जाए और इनको कैसे इनके साथ एक सौहार्द थोड़ा मेरा किया जाए, ये एक तरीका है। खाली फौज से तो होने वाला नहीं है, दबाव से तो आज तक
जो कश्मीरी पंडितों को वहां से भगा दिया गया,
वो तो पंडितों को नहीं मारा जी, पर कभी फौजा से पहले एक बारात जा रही थी, डोडा है एक स्थान कश्मीर, हाँ वो हिंदुओं की बारात थी, उस बस को रोक के 26 आदमी को और
कैप्टन मैरूम ठाकुर जी
दूल्हे को भी मार दिया, 26 आदमियों को सीधा खड़ा करके बोली, ये तो आप कर रहे हैं तो क्या होगा इसका फायदा। तो अच्छा, वो सब पाकिस्तान से मिले वो जो लोग हैं उन्हीं ने किया है। तो अब उसके बाद अडवाणी गए वहां डोडा,
उसके बाद गए
इस संघार के बाद, तो फिर जाके उन्होंने वहां पर 4-5 अनाउंसमेंट्स किए हैं जो काफी मेरी समझ से बहुत समझदारी
तो
बहुत महत्वपूर्ण है। ये करना ही पड़ेगा, खाली फौज से दमन से नहीं होगा, ये तो करना पड़ेगा। अब बरसों, ये तो सच्ची बात है कि 20-50 बरस तक कश्मीरी थे भले वो जो वहां के मुख्यमंत्री थे, जो राजनीति के थे, लेकिन किया तो यही है, उन्होंने लूटा है लोगों को, जनता को कोई कुछ नहीं दिया है, अपने जेब भरे हैं जैसे बाकी देश में कर रहे हैं राजनीतिक वैसे वहां भी किया है, तो अब उसका कुछ तो करना पड़ेगा इनको कि वहां कुछ थोड़ी आर्थिक स्थिति सुधारें, थोड़ा सा कुछ नॉर्मलसी पैदा करें, कुछ ऐसे लोगों को अपनी तरफ लाएं जो चले गए हैं। पंजाब में देखिए हो गया खत्म बिल्कुल, तो पंजाब में तो बड़ी एकदम ठीक खराब हो गई, बिल्कुल सही है।
जहां ये लोग रहेंगे अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी वाले
जी,
इन पर थोड़ा सा विश्वास किया जा सकता है।
हाँ
ये लोग काम अच्छा करें।
हाँ उनसे तो अच्छे ही हैं, हम कहीं अच्छे हैं
उनसे अच्छे हैं।
चोरों की जमात हो गई है।
नरसिंह राव और क्या क्या सब कहाँ कहाँ सब क्या क्या अच्छे अच्छे आदमियों को भी रखे हैं, भी वो बहुत अच्छे आदमी है।
देखिए मैं आ रहा था वहां से गुवाहाटी से, तो ये जैसे साधारण और यात्री हैं वैसे ही अपने इकोनॉमी क्लास में बैठे हुए थे, कुर्ता पजामा पहन के, एक पीए उनके साथ था, बस कुछ नहीं और कुछ नहीं, कोई ताम झाम नहीं, मिनिस्टर का अपना कुर्ता सुबह खुद धोते हैं अपने हाथ से, कुर्ता पजामा वही पहनते, इस्त्री भी नहीं करते उसको, कुर्ते को वैसे ही। और फिर जब चलने उतरने का समय आया दिल्ली में, तो जैसे लोग खड़े हो जाते हैं जहाज में सामान मान लेके, अपना सब खड़े थे लाइन में, ये पांच छह आदमी के आगे थे, कुछ पीछे थे, अपना चुपचाप खड़े थे लाइन में,
कुछ नहीं कहा,
ये नहीं कि मंत्री हैं हम हट जाओ और हमारे लिए रास्ता बनाओ, ये करो कुछ
तो ये लोग देश का कुछ कर लेंगे।
हाँ ये लोग कुछ करेंगे, बाकी तो
कौन कौन अभी अभी जाओ रसोई बनाओ।
तो इस माने में कुछ अच्छे लोग हैं, कम से कम पैसा खाने के चक्कर में तो नहीं पड़े हैं। ये सब तो है,
तो ऊपर वाले और हमारे प्रधानमंत्री अडवाणी जी हैं,
हाँ ये सब लोग सही हैं,
ये लोग पैसे खाने
के नहीं इस चक्कर में नहीं है, बिल्कुल ये
देश के लिए कुछ कर सकते हैं, तो पहले तो कुछ करेंगे इसके बाद में,
हाँ बाद में तो देखा जाएगा, बाद में तो कुछ हो सकता है, नशा को भी थोड़ा हो जाए पावर का
यदि हो जाए।
तो तुलसीदास ने कहा है, नहीं कोई अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही।
अभी कल्याण जो है उत्तर प्रदेश में, जब जब उनको मौका मिला बड़ा अच्छा काम किया
जी,
गुंडे बदमाश चोर सब ठंडे हो गए, और जहाँ यह हटा फिर आरम्भ
फिर गया,
तो अभी तक तो ये लोग यहाँ तक है
जी,
चल रहे चले आशा, ये भारत के बाह्य यदि कुछ कर सके सेवा तो अच्छा है, नहीं तो दुनिया की नजरों में भारत मिशन को नीचा लिया हुआ है दारिद्र की तरफ से, और गुण जो भीतर वाले हैं तो वो तो कोई देखता नहीं, ये भी भारत वर्ष में बड़े बड़े अच्छे से,
हाँ बिल्कुल है, तो भी भूमि है, क्या है वहां की मिट्टी में कुछ है, परंपरा चली आ रही है हजारों वर्ष से, श्रृंखला अभी तक टूटी नहीं है।
मैं जहाँ कहूँ कि इंग्लैंड में जब पहले गया या यहाँ आया, हमने कहा कि देखो मैं हमारे भारत के बहुत से लोग आए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी कुछ भीख मांगने के लिए, मैं भीख मांगने के लिए नहीं, मैं समृद्ध भारत से आया हूँ, यदि मेरे हीरे जवाहरात जो बिहारों के हैं यदि किसी ने दिया तो वो लोग धन्य हो जाएंगे, उनका जीवन सफल हो जाएगा, मैं देने के लिए आया हूँ लेने के लिए नहीं। बस सब लोग बड़े प्रसन्न होकर के आए, और सच जहाँ कहीं गया पैसे का कोई सवाल नहीं, पैसे की हमको जरूरत नहीं, हम मारे रोटी वृंदावन में माधुकरी जानते हैं,
हाँ माधुकरी
माधुकरी में हमको एक दो रोटी मिल जाती है, बस सिर तकिए के लिए हमारा हाथ, हमको जरूरत नहीं है, पेड़ हमारे लिए हैं, फल देने वाले हैं, पानी के लिए जमुना जी गंगा जी या जहाँ से मिल ही जाएगा,
और क्या चाहिए
हमको, कुछ चीज की जरूरत है, जाएंगे तो खाली हाथ जाना है, तो फिर इस लोग वेदों के उपनिषदों के जो जो हम लोग के साथ में जा रहे हैं। हरे नाम हरे नाम हरे नाम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते वही कलयुग नाम
एक समय
जहाँ गया हमारी बातों को बड़ा प्रेम से सुना
जी
टूटी फूटी भाषाओं में
सुना यही
वो उनकी अच्छी भाषा की बातें नहीं सुनना चाहते
हृदय की बात है
वो टूटी फूटी बातें ही सुनना चाहते
वो तो बहुत सुन चुके हैं वो लक्ष्यदार भाषण तो बहुत सुन चुके हैं उसमें कोई सार नहीं है
करोड़ करोड़पति लोग लाखों करोड़ रुपया देने के लिए लेकर के क्या मंदिर बनाएंगे कुछ दिन के बाद पुराना हो जाएगा कबूतर उसमें अपना बीट करेंगे और क्या लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे
सही बात
हमारे पास में मंदिर बहुत है वृंदावन में घर घर में मंदिर है अयोध्या में घर घर में मंदिर है
सही बात
द्वारका में कितने विशाल विशाल से मंदिर पड़े हुए हैं वो जो लोगों का हृदय यदि मंदिर बनाया जाए
थोड़ा सी मंदिर तो वही है
असल मंदिर अढ़ाई अक्षर प्रेम का
पढ़े पंडित पोथी पढ़ पढ़ जग बुआ पंडित भया न को है ढाई अक्षर प्रेम का
किसका कबीर का ही
कबीर का ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो
यही सब
प्रेम का ही तो सब वही तो सब कुछ है लेकिन महाराज जी एक बात बताइए मैं स्वयं कायल हूँ इस बात का बिल्कुल कि परमात्मा प्रेम से ही प्राप्त होता है ज्ञान से नहीं होता लेकिन और प्रेम का स्रोत जो है वो अंदर ही है हमारे
हाँ
लेकिन ये जो रास्ते में जो रुकावट है जो दीवार जो हमने स्वयं बनाई है अपने हाथ से खूब पक्का सीमेंट लगा के दो एक का गारा और ये सब ईट रोका है उसको इसको कैसे गिराया जाए हटाया जाए ताकि ये बहे जो कुछ भी है प्रेम का स्रोत अंदर से ये जब उसमें बह जाए आदमी फिर तो क्या है फिर और कुछ पाना ही नहीं है फिर तो सब कुछ मिल गया
पहले थोड़ा सा अपने छोटी सी पुस्तक
जी
जिसमें प्रेम का या भक्ति का क्या स्रोत भक्ति ही आगे चल करके प्रेम बन जाती है
जी
जब तक प्रेम का आभास है तब तक उसको भक्ति कहते हैं जब तक उसका साधन हो रहा है और वही जब
अनुभव हो जाता है जब आभास अनुभव में बदल जाता है
अनुभव में बदल जाता है
अनुभव में आ जाता
तो कोई प्रेम है जब तक हम प्रेम के या भक्ति के स्वरूप को न समझ कर अपनी इच्छा से या जो लोगों ने उसको अनुभव नहीं किया है वो एक आभास जैसा जो जिस चीज को प्रेम कहते हैं या भक्ति कहते हैं जब तक हम उसमें हम इंटेंगल्ड रहेंगे तब तक उस स्वरूप को हम प्रेम के स्वरूप को नहीं जान सकते इसलिए प्रेम का क्या स्वरूप ये थोड़ा सा हमारा भक्ति तत्व विवेक अंग्रेजी का एक लाओ या हिंदी का
कोई भी हिंदी का ही अच्छा है मेरे लिए
हिंदी का हो तो अच्छा है
नहीं तो अंग्रेजी का भी चले प्रेम के संबंध में तो सब कुछ पता है लेकिन प्रेम का कुछ पता नहीं उसका अनुभव
ये जिसको कुछ प्रेम हो या प्रेम का आभास भी जिसके अंदर में है थोड़ा सा आइडिया है उनका यदि हम संग करें
जी
तो कुछ हो सकता है
अच्छा तुम्हें याद हुआ
और यदि जिसके अंदर में नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता है हमारे अंदर में प्रेम का हम देखते हैं कि एक बाघ भी अपनी स्त्री को बड़ा प्रेम करता है दूसरों को काट देता है खा जाता है
तो प्रेम नहीं हुआ
तो उसके अंदर भी प्रेम का कुछ विकार है, विकृत है
हाँ, विकृत है
किंतु है प्रेम
हाँ, अंकुर है
एक छुई मुई को हम छू देते हैं तो वो लज्जित होकर पत्ते सिकुड़ जाते हैं उनमें भी कुछ अनुभूति प्रेम की है हमारे अंदर में भी है हम आनंद कहते हैं या सुख कहते हैं किसी के साथ में प्रेम से बोलते हैं तो यदि न हो तो प्रेम तो इसलिए यदि जिसके अंदर में साधु संग सर्व सिद्धि है यदि ऐसा कोई हो
सब
स्वामी गोस्वामी जी है नारद जी निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादम विद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम ऊर्वो रसिका भूभाग। ये सुखदेव जी गोस्वामी जी ने कहा या व्यास जी ने कहा जय श्रीमद्भागवत। तो यदि ऐसे कोई हो परीक्षित महाराज जी ने उनके मुख से सुना, तुलसीदास जी ने अपने गुरु से सुना, या कबीर को भी ले लीजिए रामानंद जी से सुना, उनके अंदर में जो प्रेम था वो विशुद्ध होकर के और वो निकल पड़ा, उसका स्रोत अनुभूति उसकी स्रोत अनुभूति हुई उसको
सत्संग से,
सत्संग के द्वारा। बिनु सत्संग न पाव ही प्राणी, तुलसीदास जी ने एकदम मोहर देकर के ऐसा लिखा,
बड़े भाग्य पाव ही सत्संगा बिना प्रयास हो भव मंगा। तो तुलसीदास
विशेष करके उत्तराखंड में इस वर्णन किया, तो बिना सत्संग
एक घड़ी आधी घड़ी आधी से भी याद, हाँ वो तो वहां तक चले गए।
अतः नहीं, यहाँ तक ही लिखा उन्होंने, भारी मथे बरु हो ये घृत शिकता ते बरुते दिनु हरि भजन न भवतरी यह सिद्धांत। और अंत में लिखा है, काम ही नारी प्यारी जी लोभ ही प्रिय जी विद्धां तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। ये सब प्रेम के ऊपर में, किंतु जिसको नहीं हुआ है वो नहीं इसको प्रकाशित कर,
बस वही 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 तो सारा खेल है, प्रकाशित कैसे किया जाए, जो अंदर है वो कैसे बाहर आए।
देखिए एक चीज है, हमारे यहाँ मंत्रों में बीज मंत्र बदला है, जैसे गायत्री है उसमें भी बीज ओंकार है, जैसे हमारे काम गायत्री है, कृष्ण मंत्र है
जी,
हिंदी वाला नया है ना आपका, अरे नहीं भाई नया वाला हम इनको प्रेजेंट करेंगे, या हम कुछ पुस्तकें जो दी हों तो इनको हम अपनी पुस्तकें,
वो जैव धर्म तो मेरे पास है, जैव धर्म तो है
हमारा वाला है,
हाँ है
हिंदी वाला,
हाँ
तो ठीक
है वो तो मेरे पास है।
तो देखो तो ये भक्ति तत्व हिंदी का हो नहीं हो तो अंग्रेजी वाला भी,
हाँ अंग्रेजी वाला भी ठीक है,
ये तो अपने पास रखता हूँ। हमने करीब करीब 35-36 पुस्तकें
जी
अभी तक हम, कुछ अनुवाद हैं ऑथेंटिक बुकों के गीता का जैसे है, कुछ स्वयं हमने उसको लिखा है, बड़ा उसका ही भारत में भी भारत के बाहर भी आजकल लाखों की मांग। तो ये प्रेम हम सुख चाहते हैं, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो सुख नहीं
चाहता,
किंतु यह सुख कब होगा, सुख का पर्याय वाची शब्द आनंद, सुख में ये आपकी
हमारी बेटी है किरण,
बेटी तुम्हारा कल्याण हो, बैठ अभी क्या कर रही है,
पढ़ रही है, पढ़ कर वहां से कर लिया कॉलेज से तो समाप्त, अब आगे
जाते वार्तालाप सुन। सुख का पर्याय वाची शब्द, हिंदी समझती है बेटी,
ओनली वेरी लिटिल,
हरी तो तब कैसे समझे, तो समझना मुश्किल, और हमको हिंदी बोलने में आनंद,
यहाँ बहुत आनंद, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता,
ये भी समझ लेती तो बहुत अच्छा, सुख होता है
जी।
वह एकांगी शब्द है
जी।
आप अपने सुख को भोग सकते हैं, इसमें विषय नहीं है, आश्रय है, आश्रय समझते हैं, सुख का हम आश्रय है, तो सुख का इसमें विषय नहीं है, हम जब इस बेटी को
हम आश्रित हैं सुख का,
हम आश्रय हैं,
आश्रित हैं सुख पर,
आश्रय नहीं हम सुख के आश्रय हैं, माने सुख को भोगने वाले हैं
जी,
है ना, जब यही सुख किस रूप में होता है, जैसे आप बेटी के लिए आपने खाना खिलाया या कुछ को प्यार किया, इसको इसको सुख हुआ, इसके सुख से आप सुखी हुए, तो इसको सुख नहीं कहेंगे, इसको आनंद कहेंगे। इसमें विषय और आश्रय दो, ऑब्जेक्ट एंड आश्रय,
सब्जेक्ट
सब्जेक्ट दोनों, किंतु सुख में नहीं। मैं खा रहा हूं, मुझे बड़ी बहुत सुख मिल रहा है, आस्वादक यहाँ तो सुख है, और जब मैं किसी को खिला रहा हूँ और उसमें जो सुख हो रहा है उसको सुख हो रहा है, इसमें हमको भी ये आनंद हो जाएगा। तो आनंद में दो चीजें हैं। नमस्कार। नो 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 नीड, बिकॉज यू आर माई फ्रेंड, लाइक ही इज माई फ्रेंड, यू कैन सीट ऑन दैट, आई डोंट वॉन्ट दैट यू शुड सीट। तो जिस समय मैं जो आश्रय हूं सुख का, यह नित्य रहेगा
जी,
और उसका विषय जो है नित्य रहे, जो कभी मरणशील न हो, स्थूल शरीर पंच भौतिक न हो, वो मैं शुद्ध, और वह शुद्ध भगवत तत्व परमार्थ तत्व जिसका जन्म मरण न हो, नित्य एक रस हो, वो यदि सुख का विषय हो, आनंद का विषय हो, और मैं उसका आश्रय, तो दोनों में प्रेम होगा, और वो प्रेम इतना अधिक होता है जो अपने सुख की अपेक्षा कोटि गुण सुख होता है अपने प्रियतम के सुखी करने में
जी।
तब तो ये इसी का नाम भक्ति है, इसी का नाम भक्ति है। अब हमारे अंदर में सुख की जब लिप्सा है, मैं सुख चाहता हूं, उनको भी ऐसा संसार में कोई नहीं है जिसमें सुख की इच्छा न
हो,
और
स्वाभाविक
दूर न हो,
स्वाभाविक
स्वाभाविक
नैसर्गिक
नैसर्गिक है, इसलिए हमारा स्वरूप भी सुखमय है। किंतु
सच्चिदानंद कहा,
इसलिए सच्चिदानंद माने तीन चीज है, सत सत्ता है,
चित्त भी है,
सत माने सत्ता, सत्ता माने क्या,
एग्जिस्टेंस,
एग्जिस्टेंस मैंने जिसमें नाम भी हो, रूप भी हो, शक्ति भी हो, जिसमें प्रेम भी हो, उसमें सब चीजों की सत्ता है, इसलिए उसको सत्य, और वो नित्य है। हमारी ये सत्ता शरीर की है किंतु अनित्य है, और ये क्षण क्षण में परिवर्तित होती है, वो परिवर्तन नहीं होता, क्षण क्षण में नया होता है वो। चित माने होता है ज्ञान, ज्ञान ही एक स्तर में जा करके भाव बन जाता है, और भाव से आनंद फिर हो सकता है। जैसे ये मेरी लड़की है, ये मेरी पत्नी है, और उसमें जो प्रेम का भाव है, ये जो अनुभव कर रहे हैं, ये ज्ञान ही तो है एक तरह का, किंतु अब वो ज्ञान जो बिना रस का था, निरस था, अब ये संबंध के वजह से उसमें थोड़ा सा रस अब आ गया।
तो प्रेम एक तरह से ज्ञान का फल है,
ज्ञान ही का एक, ज्ञानी की स्थिति है, एडवांस स्टेज है, अलग से कुछ नहीं है,
वही परिवर्तित हो जाता है,
परिवर्तित हो जाता है
अभी आगे जाकर।
ये क्या चीज है, ये क्या, ये भी तो ज्ञान है, और जहां पर प्रेम का भाव आ गया वही पर उसकी अंतिम स्थिति है
चरम,
वही फिर आनंद हो जाता, सत चित वह आनंद जो कभी विकृत न हो। तो ये भगवान का स्वरूप बतलाया गया, किंतु इसमें प्रेम ही प्रधान है, प्रेम प्रधान इसमें। तो हमारे अंदर में सुख की जब इच्छा है, हमारी जो सत्ता है ये भी सुखमय है, इसलिए तुलसीदास जी ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज
सुख।
सहज मैंने क्या, सहज सहज
स्वाभाविक, बिना प्रयास के, बिना
नहीं, इसके अक्षरों में उसका अर्थ छिपा हुआ है। सहज ज माने जन, सहज सहज जायते, जब से हमारा ये बना है इस दृष्टि ये शरीर या आत्मा जब से हुई है तभी से ही उसमें सहज आनंद है। हमारा जो स्वरूप है वो आनंद के साथ
स्वाभाविक स्थिति है,
स्वाभाविक स्थिति है जन्म से ही। अब यही जो आनंद है, ये आनंद का जो हमने पहले बतलाया जो विषय, विषय यदि न हो तो वो सुख होकर के और कुछ दिनों के बाद में
समाप्त हो जाए,
समाप्त हो जाए।
तो सुख को हम क्षणिक आनंद कह सकते हैं
इस जगत में,
और आनंद को शाश्वत
भगवान को या हम उनकी सत्ता मान करके, उनका रूप मान करके और उनमें प्रेम मान करके, सर्वशक्तिमत्ता परम करुण है यह मान करके यदि उनसे हमारा प्रेम हो तो उनको सुखी करने में, उनकी सेवा करने में जो आनंद होगा, जिसे वो आनंद होंगे, उनका आनंद पूर्ण है, हम उसको व्यक्ति कर सके, इसी का नाम प्रेम बदला। जैसे यह प्रेम कहने से भी लाखों उसके प्रकार भेद हो सकते हैं। एक घास को आप ऐसे कर रहे हैं, उसमें पानी दे रहे हैं, तभी तो प्रेम ही है। एक कुत्ता है उसको आप तूतू कर रहे हैं, ये भी प्रेम है। एक पेड़ में पानी दे रहे हैं, ये भी प्रेम है। एक पत्नी से प्रेम कर रहे हैं, ये भी प्रेम है। किंतु इन समस्त जगत के जितने प्रेम हैं उसको लेकर के पांच भागों में विभाग कर दिया गया। एक बतलाया गया शांत प्रेम, एक बतलाया गया दास्य प्रेम, एक बतलाया गया सख्य प्रेम, एक वात्सल्य, एक मधुर। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, ये पांच। शांत माने पेड़ पौधों के प्रति और सबके प्रति होता है, प्रेम का विकास नहीं है, प्रेम के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, उसको कहते हैं शांत प्रेम, शांत। दास्य में हनुमान जी का राम के साथ
सेवा भाव,
सेवा की भावना, राम उनके नित्य हैं, हनुमान जी भी नित्य हैं, और उनका अखंड प्रेम इसलिए उनकी उन्होंने शादी नहीं की, कोई बाल बच्चा नहीं, जिससे उनका प्रेम का विभाग हो जाए, बस राम के साथ
एकाग्र
रूप में, अखंड रूप में उनका प्रेम। किंतु इसमें थोड़ी सी कमी है इस प्रेम में। हनुमान जी रामचंद्र जी को प्रेम से आलिंगन नहीं कर सकते, उनके आसन पर नहीं बैठ सकते, अपना जूठा नहीं खिला सकते, उसको अरे तरे नहीं,
शबरी वाला प्रेम नहीं है,
नहीं है
शबरी वाला, नहीं
नहीं है। शबरी का भी कुछ दास्य युक्त ही है
जी, लेकिन फिर भी
वो उनके साथ में एक पलंग पर नहीं बैठ सकते, हाथ जोड़ करके उनके साथ। तो यहाँ जहाँ पर भी ऊपर और नीचे का भाव अभी है, हमारे पूज्य हैं,
अभी दुराव है,
अभी दुराव कुछ एक कुछ है। अब सखाओं में देखिए, सखा दो प्रकार के
जी।
एक रामचंद्र जी के सखा हैं, जैसे भरत जी हैं
जी,
और जैसे सुग्रीव जी हैं
जी,
विभीषण जी हैं, उनके सखा तो हैं, अग्नि की साक्षी देकर के सखा बने हैं
जी,
किंतु वो भी राम को जूठा नहीं, एक थाली में नहीं बैठा करके खिला सकते,
सुदामा वाला
पर नहीं बैठे,
सुदामा वाला नहीं है,
सुदामा वाला नहीं है, है ना, अभी सुदामा वाला भाव है। तो अभी सखा है, आलिंगन ऐसे कर लेंगे, प्रेम से मिलेंगे, भरत से भी मिलेंगे, किंतु भरत जी उनकी चरणों की जो पादुका है उसी को पूजा करते,
खड़ाओं की पूजा करते,
इसमें भी कुछ अभी कमी है,
अभी अभी दूरी है थोड़ी।
अच्छा, ब्रज के सखा जो है वो कृष्ण से गलबहियां लगा लेंगे, अरे तेरे करेंगे सारे, तू कैसा हम कैसे, वो उनसे लड़ झगड़ लेंगे, बिना उनके रह नहीं सके, इस प्रेम में थोड़ा सा और बढ़ गया,
करीब आ गए।
अब जिस समय में भक्त बड़ा हो जाता है और प्रभु ज्यादा छोटे हो जाते हैं, जैसे यशोदा मैया कृष्ण को छोटा मान करके अपना स्तन पिलाती है, उनको इधर करवट फिराती हैं, उनको खिलाती हैं पिलाती हैं और शासन भी करती हैं, तो धृष्ट हो गया, तो चोर हो गया, चोर भी कहते हैं उस परब्रह्म को, यहाँ प्रेम की और अधिकता हो गई, पालन पोषण करने वाला वही बन गई। इस प्रेम में इतना अधिक होता है अपनी गोदी में लेकर के और उसे सुलाती है, खिलाती है, इसलिए बात्सल्य का। और इससे भी अधिक है गोपियों में उपपति का भाव से जो गोपियां कृष्ण को सेवा करती हैं, उनकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं, और वो है क्या उन्हीं की शक्ति है, वो रूपांग रूप धारण करके वहां इनका प्रेम सर्वोत्तम होता है। ये माता जैसी सेवा भी करेंगे, मित्र जैसा हंसी तिलगी ये भी करेंगे, और सेवक जैसा सेवा भी करेंगे, और सब प्रकार से। इसलिए इन गोपियों का जो प्रेम है सबसे सर्वोत्तम माना गया, और उद्धव और नारद जैसे भक्त कर रहे हैं, आशाम हो चरण रेण दुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लताओ सदन्याम। मैं वृंदावन में यदि कहीं एक छोटी सी घास बन जाता और गोपियों की चरण की धूलि उस पर रज पुष्प मिल जाती तो मैं कृतार्थ हो गया। फिर उद्धव कहते हैं कि ये मेरे लिए संभव, इसलिए दूर से कहते हैं वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणुम अपेक्षा, गोपियों की चरण की धूलि को मैं बहुत दूर से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि कृष्ण उनके बन गए हैं, उनके चरण दबाते हैं गोपियों के, और कहते हैं कि मैं गोपियों मैं सबको मैंने कृतार्थ कर दिया, जो जो चाह उसको दिया, किंतु तुमको कुछ देने में असमर्थ हूं, मैं तुम्हें कुछ भी प्रतिदान नहीं कर सका। यदि कहूं जैसे आप मुझे कुछ दीजिए, कुछ मांगो, और यदि आप लोग मांगे तो आप लोग यही मांगेंगे अपनी सेवा दीजिए, फिर मैं आपका ऋणी बन जाऊंगा, क्योंकि आप लोग उनसे कुछ चाहते ही नहीं है, ऐसा जगत में कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारे प्रेम का मैं ऋणी। कृष्ण कहते हैं गीता में ये यथांग माम प्रपत्ति, जो लोग जैसा हमारा प्रपत्ति स्वीकार करते हैं मैं उनको सभी चीजें दे देता हूँ, किंतु गोपियों के बारे में मैं हार गया हूँ, मैं उनको उनका ऋण ही रहा, क्योंकि हमारी सेवा करते हुए कुछ मांगती नहीं, ये प्रेम निस्वार्थ प्रेम, यही प्रेम गीता भागवत में सबसे अधिक, राम में भी यही ऐसा ही लाया है, किंतु राम का है कुछ सीता का अतिरिक्त और किसी को ग्रहण नहीं करेंगे, चाहे लाभ कोई साधन करें, कहेंगे जी हमारे कृष्ण लीला में आ जाना, जनकपुर के जितने कुंवरियां लड़कियां थी उन्होंने चाह देखा जो सीता का तो राम के साथ में लीला, हमारा बर भी ऐसा। राम ने मनी मन में सोचा या कहा मेरे समान तो दूसरा है नहीं, तो मैं तुम्हें अंगीकार तो कर रहा हूँ किंतु इस जन्म में नहीं, तुम लोग कुछ करके आएगी उसमें मैं करूँ। सीता के जितनी भी सोने की मूर्तियां बनी राम ने उसकी प्रतिष्ठा कराई यज्ञ के समय, वो सब जीवित हो उठी, उन्होंने कहा जैसे अब हम आपके साथ रहेंगे इस जन्म में, सीता ही रहे
तुम लोग को तो मर्यादा स्थापित करनी थी, मर्यादा पुरुषोत्तम थे,
इसलिए राम जो कृष्ण है उनके पास में पूतना भी गई मैया का वेश बनाकर, उसने माता की गति दे दी, जो जिस रूप में गया उसको सब कुछ पूरा किया, ये कृष्ण की विशेषता। इसलिए भगवत्ता की चरम सीमा भागवत में माना गया, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान, कृष्ण गोपियों के चरण धो रहे हैं, जो सोदा मैया नंद बाबा की जूती सिर पर लेकर के नृत्य करते हुए आ रहे हैं, लोग गोपियों के जूठे खाते हैं, बंसी बजा करके उनको बुलाया, उनकी खोज कर रहे हैं, रासलीला में अंतर ध्यान होने पर गोपियां उनकी नहीं खोज कर रही बल्कि यही उनकी खोज कर रही, कहां गई,
वही तो प्रेम है जो जग का पालन हारा है।
दिन गुरु भवनिधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम हो, उनके समान भी होता है
जो गुरु मिले विरंच समान,
ज्ञान अखंड एक सीतावर, अखंड ज्ञान अद्वै ज्ञान ये है सीतावर, माया पश्य जीव सचराचर व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बलधामा, परवस जीव सबस भगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव अनंत है और मिलकर मिलकर के एक नहीं होंगे, ये
नारायण एक ही,
नारायण एक है किंतु नर है अनंत है।
देखो तुलसी है
माया बस से जीव अभिमानी, माया बस जीव, और कहां भगवान माया के पति, दोनों कैसे एक हो सकते हैं, कैसे एक में मिल सकते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराश सो माया बस भयो गुसाई बधो वीर मर कठिनाई जड़ चेतन ग्रंथी पड़ी गई यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। झूठी है तो भी ये शरीर मेरा है, मैं हूं अभी, ये ग्रंथि शहर में छूटने वाली है। माया बस परिछिन्न जड़ जीव की ईश समान, ईश के समान में जीव नहीं हो सकता है। माया ईश न आप कहो ज्ञान कहिए सो शीन, ये सीतावर जो राम है यही परब्रह्म है, राधा कांत जो कृष्ण है यही परब्रह्म है, दोनों एक ही है, दो नहीं है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि उनका शरीर नहीं, वो निर्गुण है, उनमें कोई शक्ति नहीं, पावर नहीं, रूप नहीं, जो रूप ही नहीं धारण कर सकता है तो वो ब्रह्म क्या हो सकता है। एक देखिए ना, सत एव सम्य इदम अग्र आशी, मैं था मुझसे ये जगत हुआ, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, अपने रूप के अनुसार गॉड ने हमें बनाया, मनुष्य को बनाया। बाइबल में भी ऐसा ही है, मुझे कुछ शब्द याद नहीं है तो भी, इन्ना लहा खला का मैन सूरत ही, इसका तात्पर्य यह है खुदा तल्ला ने अपने रूप के समान में ये सारे जीवों को बनाया। तो भगवान का रूप ही नहीं है तो फिर कहां से बनाया, बनाया कहां से, जो बनाने वाला है उसको रूप होगा। इसलिए हमारे उपनिषद में ऐसा कहा गया, जतो वायमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जत अभिषम विषमन्ति तद विजिज्ञासतः, जहां से ये सारा है। और अंत में वही उसका पालन पोषण कर, और फिर अंत में वही उसमें समा जाए, उसी को करते
वेद भी तो यही करते
हैं। इसलिए उसके साथ में वो बड़ा बड़ा ये है, कारुणिक है। यदि हम इसी रूप में प्रभु आप मेरे की, मैं आपका हूं, बस यह कह दे और हृदय से, फिर उसको प्रभु जैसे होगा सत्संग दे करके जैसे तैसे उसको अपनी करनी जरूरत, बस यही एक मंत्र है। अकारण उच्यते कृष्ण, अकार का तात्पर्य है कृष्ण से, ओकार का तात्पर्य है उनकी शक्ति से, पावर से, वो पावर सीता या राधा जी को रख लीजिए, राधा जी को, मौ जीव वाचक। अब यही चल करके पढ़ करके उसका उच्चारण करते 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 करते, जैसे बीज से दो पत्ते अंकुर निकला, अंकुर से पत्ते, पत्ते से डाल, डाल से धड़, बढ़ते 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 उसमें पूरा एक वट वृक्ष जैसे बन गए। इस बीज मंत्र के उच्चारण से भजन करते 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 करते, साधन करते करते करते, जो कुछ रियलिटी है इस जगत में, ये कहां से आया, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब कुछ उसी से आ जाए, उसी के अंदर में। तब सभी लोगों ने ये कहा कि नाम के अतिरिक्त कलयुग में दूसरी कोई गति नहीं, इसी से ये प्रेम होगा। किंतु लोगों से प्यार भी रखना पड़ेगा, किंतु यह प्रेम विकृत है, शुद्ध प्रेम आत्मा के द्वारा भगवान के साथ में होगा, इसका परिवर्तन नहीं है, ध्वंस नहीं है, वह प्रेम शुद्ध है, इसको हमारे ऋषियों ने, मनुष्यों ने। गया कि हो जाए तो भी
जब हो जाए तभी फिर उसके बाद तो कुछ नहीं पाना तो सब मिला ही हुआ है मनुष्य स्वयं ही अड़चन है उसमें और कोई बाधा नहीं
अपना ही फॉल्स है वो
और
कामनाएं
बस वही बाधा
अब जैसे देखिए भारत जड़ भरत भागवत में एक उपाय है वो उन्हीं के नाम से भारत नाम दो भरत है एक शकुंतला के पुत्र और एक ऋषभ देव के पुत्र तो ये ऋषभ वाले जो है बहुत सत्य जो किला
यहाँ पर भारतवर्ष
ऋषभ भारतवर्ष उन्होंने 9 वर्ष किए 9 वर्ष में भारतवर्ष में ये राजा को भरत और दूसरों इलाप्रत इत्यादि में दूसरे अपने 9 भाइयों को तो ये भरत जी अपनी आधी आयु में आधी माने 50,000 वर्ष की आयु में इन्होंने इस संसार को मलबत प्रत्याग किया जैसे टट्टी करने में खूब गड़बड़ हो रहा है पेट भार है आदमी व्याकुल हो जाता है जब टट्टी साफ हो गई बस ठीक ऐसे उस संसार को छोड़ अपने स्त्री को बच्चों को राज्य को सबको छोड़ करके वन में चले गए भगवान का एकांतिक रूप में भजन करने के जा करके काफी उन्नत स्थिति उनकी हो गई भजन राज्य में पहले श्रद्धा इसके बाद में निष्ठा इसके बाद में रुचि आसक्ति इसके बाद में भावावस्था भावावस्था के बाद में तब प्रेम होगा भावावस्था तब भाव उसको कहते हैं जब जीव के हृदय में वैकुंठ भूमिका से जब वहां के किसी परिकर का भाव जब हमारे हृदय में उदित होता है उसको शुद्ध सत्व या भाव कहते हैं इसी को रति भी कहते हैं तो जब यहां तक उनकी स्थिति आने वाली थी एक दिन अपने आश्रम में बैठ करके भगवत चिंतन कर रहे इतने में बाघ का गर्जन सुनाई और उसने एक हिरण के ऊपर में आक्रमण किया हिरणी थी गर्भवती डर के मारे में भागी किंतु देखा जी एक नदी और दूसरी तरफ से बाघ आ रहा बचाने के लिए छलांग मारी मार तो कर गई किंतु उसके जाने के पहले बीच में उसका गर्भ था वो गिर गया नदी में और वो छलांग पार करके गई और छटपट करती हुई अपने बच्चे की तरफ में देखती हुई प्राण छोड़ते समय में उसने देखा ये ऋषि पास में बैठे उनके तरफ में करुण नेत्र से कभी देखा और कभी बच्चे को और उन्होंने लक्ष्य किया इसे उन्होंने समझा जैसे ये कह रही है कर्म सूत्र में कि मैं इसके बच्चे को संभाल आसन से छोड़ करके चले गए और उस डूबते हुए बच्चे को लेकर के घर में ले आए अपने आश्रम अब इसको कैसे पालोगे अब दूध चाहिए था या कुछ मांगा कर तो धीरे धीरे कहीं से दूध की व्यवस्था करके उसे पाला पोषा जब थोड़ा सा बड़ा हुआ अब उसको ही उनको ही अपना माता पिता सभी पोषण जब आसन पर बैठ करके आसन आंख बंद करके ध्यान करने लगे तो उनकी गोदी में चढ़ जाता है और अपने शिष्य ऐसे ऐसे कभी पीछे से खुद जाता कभी उछल कूद करके उनकी गोदी में इतना अधिक प्रेम हो गया कि उसके बिना भी ये रह गए अब धीरे 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 उधर का अटैचमेंट जो था वो खत्म होता चला गया और इधर में अटैचमेंट होता है अपने बच्चे को छोड़ा स्त्री को छोड़ा धन का प्रतिष्ठा सब कुछ छोड़ा और वहां पर लगा और फिर वो इधर फिर पढ़ता गया और फिर वही दशा हुई एक दिन वो हिरणों के साथ में कहीं कहीं से चढ़ते हुए आए और ये छलांग मारता हुआ उन्हें अपने जाति भाइयों में मिल गया और छोटे छोटे शिशुओं के साथ में खेलता हुआ चला अब ये हायर से हायर कहाँ आ रहा बड़े पवित्र बड़ा पवित्र था जहां उसके चरण पड़ते हैं वहीं पर यज्ञ की भूमि बन जाती है इतने सुंदर सुंदर सुनौते उसके अंदर में चिन्ह दिन रात उसकी चिंता इतने में मृत्यु का समय आ गया और उसी मरते समय में भी बस उसी की चिंता करते 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 फिर वैसा ही हिरण का शरीर मरते के समय में जैसा होता है बस हिरण बन गया। हिरण बनने के बाद वो फिर उसी जगह में पहुंचे पासी में जहाँ पर कि सोनभद्र गंडकी मिलती है गंगा में यहाँ पर हरिहर क्षेत्र कहा जाता है विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है उसी जगह ऋषियों की उन्हीं पर पहुंचे। वे जब गंगा का पानी पी लेते थोड़ा सा घास कर लेते किंतु वहीं पर ऋषियों का जहाँ पर हरि कथा होती रहती बस वहीं और किसी के साथ में नहीं मिलते थे। कुछ दिनों के बाद में चलते चलते कुछ दिनों में ही उनका शरीर गंगा में गए और शरीर को छोड़ दिया। अब इस बात भगवत चिंतन करते 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 कुछ उनका एक भक्त का शरीर ब्राह्मण का शरीर अब ब्राह्मण का शरीर होने पर उनका पिताजी उनकी यज्ञ को देने के लिए ओंकार इत्यादि का उच्चारण कर रहे हैं ब्रह्म गायत्री पढ़ाते हैं वो कुछ पढ़ते हैं उनको आता ही नहीं ओम ओम यही उच्चारण ही नहीं कर सकते। बस इधर सब पागल जैसा बन करके भगवत चिंतन सब समय करते हैं और ऐसा कोई भी चीज हो जिसके प्रति आसक्ति हो नहीं रहती। धीरे धीरे पिताजी की जब मृत्यु होने लगी तो पिताजी ने कहा भाइयों से देखो अपने बेटों से ये तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं गायत्री भी नहीं पढ़ सकता कुछ कर भी नहीं सकता इसका पालन पोषण वो तो चले गए। अब भाइयों ने वो कहाँ तक करेंगे ये पागल जैसे बने हुए कभी इधर जा रहे हैं कि इधर खेत हो कहीं जहाँ पर जाते हैं वहीं पर बैठ जाते कोई काम नहीं करते उनकी भौजाइयाँ कभी मारती थी जो कुछ लपसी टपसी दे देती वही खा लेते। देखा जी मेट पर बैठेगा तो भी पक्षियों से खेत तो बच जाएगा या कोई जानवर ना खा ले मेट पर बैठा दिया तो वहीं पर बैठे ही रहेंगे रात भर कपड़े की होश नहीं कुछ भी नहीं लोग समझते जी पागल है। चार चोर एक दिन आए या कोई चोर उन्होंने देवी से प्रतीक ये कहा था संकल्प किया था यदि आज हमें धन मिल गया कहीं चोरी में तो हम बलि देंगे। सचमुच में उनको मिल गया धन काफी वो किसी को बलि देना चाहते थे पकड़ करके लाए किंतु वो भाग गया। अब ये खोज रहे थे रात में ये कहाँ ऐसा कोई आदमी मिल जाए जिसको बलि दे इनको देखा भाई ये बड़ा सुलक्षण है सुंदर सुकांत है अंग भी टेढ़े कहीं करा फटा है उसको ले गए थे ये भी उनके पीछे पीछे पकड़ करके गए थे ये चलते रहे कुछ भी प्रतिरोध नहीं किया देवी के सामने जाया करके इनको गुड़ और चना खिलाया तो खा लिया पूरा कोई भी नहीं जो मैं मर जाऊंगा इसकी भी चिंता नहीं। थोड़ी देर के बाद में उन लोगों ने लाल कपड़े बांध करके जो कास्ट एक होता है जिसमें बलि दी जाती है उसमें गिल ठोक देते हैं और सिर ऐसा लगा देते हैं ऊपर सुनाते हैं ये हिल दूर न सकते तो वहां ले गए ऐसा उन्होंने किया तो ऐसा भी कर लिया बहुत चिंतन कर रहे जीवन मरण हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस एकदम संपूर्ण जब मरने के लिए उन्होंने प्रयास किया और आग जला रखी थी जो उसमें उसकी बलि दे देंगे इतने में देवी बने हंकार किया देवी की फट गई और निकल करके सबका वध करके और इसे बोली जैसे प्रभु ऐसा मत कीजिए आपको तो कोई समझते नहीं आप भगवान के इतने ऊंचे कोटि के भक्त हैं तो मेरा भी दोष हुआ यदि आज मैं ऐसा सजग नहीं रहती तो बड़ा अनर्थ हो जाता प्रभु आप ऐसा छोड़ दिया तो वो चले आए फिर खेत पर बैठ गए। दूसरे दिन रहुगण एक राजा थे वो जा रहे थे कहीं पालकी पर कपिल देव जी की कुटी में जा रहे थे कुछ तत्व ज्ञान सीखने के पालकी चार कहार उसमें लगे गए वो चल रहे थे एक पालकी का कहार बीमार पड़ गया कहीं जाओ किसी को पकड़ लो किसी को पकड़ लिया तो वो ये देखा जैसे यही पर मोटे ताजे और बहुत बलिष्ठ पड़े हुए हैं उनको ले आकर के उसमें लगा दिया। ये चींटियों को या जानवरों को या कुछ को देखते अपना पैर यहाँ न रख करके थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया और पैर मिलता नहीं तो वो पालकी हिलती थी। तो राजा ने कहा रघुगण उनका नाम राजा ने कहा भाई तुम बड़े दुबले पतले भाई पालकी क्यों हिल रही। दूसरे सब उन्होंने कहा ये ठीक से पैर मिला करके नहीं चल रहा है, इसलिए ऐसा है। उन्होंने कहा भाई तुम दुबले पतले हो, सारी पालकी तुम ही चला रहे हो, इसलिए नहीं चल रहा, तुम बहुत दुबले पतले हो, क्यों नहीं चल रहा? कुछ उत्तर नहीं। ये बोले ये देखो मैं राजा हूं, मैं तुम्हें दंड दूंगा यदि ठीक से नहीं, होश से काम लो, अच्छी तरह से चलो। तो उन्होंने मुस्कुरा दिए, मुस्कुरा करके बोले भाई यदि पालकी का भार है तो ढोने के लिए ही है, फिर ये जो पतला दुबला कहा तो कौन मोटा कौन पतला, कौन लंबा चौड़ा कौन छोटा बड़ा, और राजा कौन प्रजा, कितने दिन के लिए, बस ये कह करके चुप हो गए। बस झट पालकी से वो कूद गए, उनके चरणों में गिर गए। आप कपिलदेव स्वयं है या कभी है अंतरिक्ष है या स्वयं कपिलदेव या कोई अगस्त या नारद ऋषि तो नहीं है, आप कौन है? मैं इसी ज्ञान के लिए तो जा रहा था, मेरी समझ में आपकी एक भी बात भी नहीं आई। उनके चरणों में आप कौन है? तो मुस्कुरा दिए, बोले जैसे मैं आप ही के विश्व में बहुत भरत नाम का एक राजा था, बस सुनते ही उनको श्रद्धा हुई उनके बातों। मैंने कहा जी ये पतला है मोटा है ये तो मैं नहीं समझा, और भार है तो ढोने के लिए, ये मेरी समझ में नहीं है, ये क्या आप बोल रहे हैं? जी देखो यह शरीर में नहीं है, आत्मा है इसलिए शरीर, इसलिए आच्छादन है, ये न लंबा है चौड़ा है न मोटा है, बहुत ही सूक्ष्म है। बालाग्र शतभागस्य श्रद्धा कल्पितस्य च, एक केस के यदि लाख टुकड़े किए जाए, लाख टुकड़ों का फिर लाख टुकड़ा किया जाए, उसे भी ये सूक्ष्म है। और कैसा है? और इसका जो मूल है वो कैसा है? अणोरपि अण्यान् महतो अपुमत्, सारा विश्व उसके अंदर में आ सकता है, इतना बड़ा है और सूक्ष्म इतना है, जो उन जीवों के हृदय में भी वो निवास करता है। वो लंबा चौड़ा इस जगत में स्थूल और ये सब कुछ नहीं, ऐसा नहीं। और भार यदि आसक्ति तुम्हारी उसमें है तो ये ढोने के लिए ही है, हमें वो आसक्ति है नहीं, मेरे लिए ढोने का नहीं, और तुम उसे ढो रहे हो क्योंकि तुम राजा हो, कब के लिए राजा होकर के जन्म लिए, ये तो नहीं, मरने के बाद में ये राजा ये शरीर ही नहीं रहेगा। तब उन्होंने एक प्रश्न किया, आप कह रहे हैं कि इसमें संसारिक जो दुख सुख नहीं है, मैं नहीं ढो रहा हूं, किंतु मैं देख रहा हूं आप ढो रहे हैं, अच्छा आपको लगता होगा कि ये भार है, तो उन्होंने कहा आपको लग रहा है मुझे नहीं लग रहा, तो ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा जैसे एक बटलोई है उसमें पानी भर दो, नीचे आग जला दो, तो जब आग जलाया आपने तो बटलोई गर्म हुई ना आग से के संपर्क से, अब बटलोई के संपर्क से पानी गर्म हुआ, उसमें चावल छोड़ दो तो चावल हो गया सिद्ध है ना। अब आग से और दाहिका शक्ति से चावल का संबंध नहीं है, किंतु संबंध हुआ बर्तन के माध्यम से, तो यदि बर्तन गर्म हुआ तो इसके अंदर में आत्मा जो है, ये बर्तन शरीर मानो, तो आत्मा भी तो गर्म होगी, उसको ताप लगेगा, आप कह रहे हैं कि ताप नहीं लग रहा, ये कैसे? उन्होंने कहा जे ये जो जगत में उपमाएं दी जाती हैं, सार्वांशिक रूप में नहीं, आंशिक रूप में, शाखा चंद्र न्याय से, शाखा चंद्र न्याय समझते हैं ना, ये देखो पेड़ के ऊपर में चंद्र है सलाखों में, एक एक देशी है, सार्वदेशिक उपमाएं नहीं होती। यदि ये शरीर में आत्मा है, यदि आप ये समझते हैं कि मैं भोगता हूं मैं ये शरीर, तो आपको इस शरीर से जितने दुख हो रहे हैं आत्मा को दुख अनुभूति होगी, और यदि वो छोड़ दो काट दो निर्लिप्त तो हो जाओ तो ये शरीर का जितना दुख है तुम्हें नहीं होगा। जैसे किसी ने आपको तमाचा मारा, ये तो शरीर से संबंध है आपको लगा, किंतु आपकी पत्नी है आपके सामने, मैंने पत्नी का आपके पत्नी को अपमानित किया है, उनको गाली दी, तो आप क्यों लगा? आपको तो मैंने मारा नहीं, किंतु आपको उतना उससे अधिक दुख हुआ जो आपको मैंने मारा था उससे भी दुख हुआ यदि आपके पत्नी को मैंने अपमान किया है, तो ये आपको अपमान क्यों होता है? बस 28 मिनट आसक्ति, यदि आसक्ति कट जाए कैसे? ये तो शरीर मट्टी है, मैं आत्मा, मैं भगवान का दास, हमारा अटैचमेंट भगवान के साथ में, यही प्रेम है। और ये आज न कल, तुम चाहो न चाहो, कोई मारे न मारे, तुमको मरना है, ये शरीर छोड़ना है, इसलिए इस आसक्ति को हटा करके वो जो आसक्ति है ठीक रहेगी, बरकरार रहेगी, ट्रांसफर कर दो, इनके प्रति ये भावना रहेगी ये भगवान के दास है, किंतु हमारा मूल जो है वो भगवान के साथ। जैसे एक चीज उपमा देखिए, आपने पत्थर फेंका आकाश, वो पृथ्वी पर है, आग जलाई, उसकी लौ जाएगी ऊपर नीचे, पृथ्वी पर नहीं आएगी, है ना? बैलून में पानी, तो ये आकाश क्यों
उड़ेगा?
क्यों? इसलिए कि जो जिसका पार्ट है वो उधर ही जाएगा, हवा जो है आग है ये पृथ्वी का पार्ट नहीं है, इसलिए अपने अपने तरफ में जाएंगे, सूरज की तरफ में आग जाएगी उसका लौ जाएगा, और पानी पानी की तरफ में जाएगा, पृथ्वी का बना हुआ कोई चीज पृथ्वी पर जरूर अटकेगा, मिलेगा उसे, किंतु ये नहीं। तो हम भगवान के पार्ट, जैसे मान लें कि यहाँ पर पानी गिरा है, वो नालियों से होते हुए वो समुद्र में जाएगा, समुद्र से फिर आकाश में जाकर के मेघ इत्यादि के द्वारा फिर पानी होकर के कहीं भी बसेगा, फिर समुद्र में आएगा, ऐसा चल रहा है। ऐसे जब तक कि हम भगवान से नहीं मिलेंगे तब तक ये संसार में हमारा रोटेशन होता है, और ये मिलने का है, कोई चीज को जोड़ने के लिए कोई चीज होना चाहिए तरल, मिट्टी का गिलावा से हम इसे जोड़ सकते हैं, ईंट को पक्का नहीं होगा, सीमेंट से या उससे भी कोई अच्छी चीज हो, यह प्रेम का गिलावा भगवान और जीव एक जीवात्मा को परमात्मा के जोड़ने के लिए ये प्रेम ही जोड़ सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं। नो बुक्स हियर, इसी गुंडीचा मंदिर मार्जन, एंड व्हाट वाज डायलॉग बिटवीन सर्प दामोदर एंड शिवास, एंड हाउ चैतन्य महाप्रभु प्रताप रुद्र महाराज सर्प श्री चैतन्य महाप्रभु तबक धाम लाइक दिस थिंग्स, हाउ जगन्नाथ टेम्पल वॉज बिल्ट, हाउ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के, वाई नॉट फुल बॉडी मल्ली देश, प्रेम से उनका श्रीअंग गल गया इसलिए पूरे नहीं वहां पर प्रकाशित, नारद जी ने कहा जी यही हम रूप चाहते हैं, और वही वहां पर स्थापित,
बड़ा सुंदर है वो। जगन्नाथ
कल ही परसों से कल ही हुआ,
कल श्री रथ यात्रा,
अब हम रहते तो वहाँ पर जगन्नाथपुरी में होते, इंडिया में रहने से
कल थी
जी, दैतापति यू नो अब नव
जगन्नाथ
पर्सनली इन्वाइटेड मी दैट आई वांट दैट यू शुड कम एंड आई विल टेक यू ऑन द चैरियट फ्रेंड इट
यू हाँ
writing not so good. I wanted that to be very cold.
ढाई अक्षर चाहिए इसमें,
बस ढाई अक्षर ही मिले, अधिक नहीं है, सिर्फ सब ढाई अक्षर के लिए ही
सब ढाई अक्षर ही चाहिए। उनके पास में जाता था बहुत, तो वो भी तो नहीं बड़ी पुस्तक 63 में उनका देहांत हो गया,
किंतु वो भी निर्विशेषवादी थे।
हाँ
निर्विशेषवादी समझ रहे
हैं,
अद्वैतवादी।
हाँ अद्वैतवादी थे, बहुत पुस्तकें दिया करते थे मुझे वो, तो उनके शिष्य जो थे उनको कहते थे स्वामी शिवानंद नहीं जी स्वामी गिवानंद, इनका ही काम है कि देते रहते हैं कुछ ना कुछ। बड़ी पुस्तकें अभी भी मेरे पास पड़ी हुई हैं उस जमाने की,
काफी उनके शिष्य।
हाँ बहुत
कुछ भक्ति लाइन का भी उपदेश करते थे।
हाँ
भीतर भीतर अपना जो भाव रखे किंतु भक्ति का ही ऊपर से सब भक्ति की बात करते हैं। दक्षिण भारत के,
दक्षिण भारत मद्रास
भक्त तो दक्षिण में ही हुए हैं।
हाँ तो ये परंपरा वहीं से आई, भक्ति सारी लहर वहीं से आई।
अवतार हुए हैं सब उत्तर भारत में या कुछ और इधर उधर, किंतु भक्त लोग उधर में। किंतु हमारे सुखदेव गोस्वामी जी नारद जी और ये सब उत्तर भारत के हिमालय की।
रामानंद भी तो वहीं के थे दक्षिण के।
सुनते हैं कबीर जी सोए हुए थे रात में।
हाँ।
रास्ते में
या
ऊपर में ठहर कर गई कैसे राम राम को हुए, वो दे नहीं रहते इनको।
ले लिया ले लिया,
जब देते तो कमाल कर देते ये। और ये एकलव्य भी ऐसा
साधना थी। हाँ ले लिया,
हम ले लेंगे।
ले लिया
तो ले लिया, तो उन्होंने कहा जो तो ये जरा दे दो, दक्षिणा तो दिया नहीं, तो ये दे दो,
अंगूठा काट के दे दो।
लोग समझते हैं कि भक्त गुरु भक्त था, किंतु बात ऐसी है उन्होंने उससे पूछा था कि तुमको ये विद्या किस लिए जरूरत है, तो साफ कर दिया मुझे अर्जुन से द्वेष, मैं अर्जुन को परास्त करने इसके लिए मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे अंदर में द्वेष है, जिसको द्वेष है उसको नहीं दे सकता। उस समय तक दुर्योधन के हृदय में कुछ द्वेष भावना नहीं थी, पीछे से हुआ। कर्ण को भी इसीलिए नहीं दिया, वो भी इसी उद्देश्य से कि अर्जुन को परास्त करके उसे मारेंगे, इसलिए वो अंगूठा ले लिया। जब अब वो निशाना नहीं
लगा ही नहीं सकता,
अंत में वो भगवान के हाथों से मारा गया चंद्र सिंह, उसने कृष्ण पर आक्रमण किया।
एक लव्य ने
अंगूठा जाने पर भी बड़ा, इसलिए हमारे शास्त्र में उनको महत्ता नहीं दी गई, कर्ण को नहीं महत्ता दी गई। चोरी छिपे धोखा दे करके परशुराम जी से उसने विद्या ली, तो उन्होंने कहा जो समय आने पर भूल जाएगा, हमने दे तो दिया तुमको,
लुप्त हो जाएगी।
इसलिए अंत मारा गया। बड़ी रहस्य की बात, उन्होंने लक्ष्मण जी ने सीता जी से कहा मैं तो जा रहा हूँ, हमारे भाई पर कोई विपत्ति नहीं आ रही, आप नहीं मान रही हैं। उन्होंने कहा जब तू चाहता है जयराम मर जाए तो मैं तुम्हारे साथ में शादी कर
लूँ, कुछ दूसरा भाव।
उन्होंने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ, राम की आज्ञा का उल्लंघन मैं कर रहा, किंतु इस लकीर के बाहर
निकलना
और रावण आया नहीं आ सका, पित्त क्या उसमें चीज थी। अभी लोग पाश्चात्य तो लोग उसके लिए इन्वेंशन कर रहे हैं और हमारा भारत बस अभी सो रहा है।
जागेगा किस अंकुर है, बीज है अभी होगा प्रस्फुटित।
प्रस्फुटित माने हमारे ऋषियों ने इन विद्याओं को माइक विद्या माना, जड़ विद्या, ध्वंसात्मा। इसलिए कृष्ण ने इन सबको मार करके पृथ्वी का भार हरण किया। आत्मविद्या लुप्त तो होने जा रही थी, उसकी रक्षा के लिए वो जो है ना परित्रणाय साधु नांग विनाशाय च दुष्कृत, धर्म ये धर्म था, आत्मधर्म की स्थापना के लिए इन असुर विचारों को मारो काटो और भोग करो, मैं तो कोई सुनता नहीं,
उसी में लुप्त हो गई।
इसलिए ये जड़ विद्या तो लुप्त हुई, किंतु प्रेम की जो विद्या थी उसके बाद में भागवत हुआ, कुछ प्रचार बने, तो ये लोग सुनते नहीं, द्रौपदी की को ये करते, मैंने अत्याचार करते, क्या क्या कर रहे थे। इसलिए कृष्ण ने सबका ध्वंस किया, इस विद्या को भी लुप्त कर, नहीं तो क्या करते न जाए। एक तिनके पर धनुष और तिनके का बाण लेकर के रामचंद्र जी ने मारीच को यहां से मारा, सरजू नदी में आया था इनको उनको तंग करने के लिए, तो वो जाकर के समुद्र में जाकर के गिरा, और मारीच को मारा कोई बक्सर सिद्ध स्थान से, तो वो जाकर के समुद्र में गिरा तिनके से, कैसी विद्या थी उस समय। परा का ग्रहण किया, पराविद्या, यू नो मन टू नो पराविद्या, वट इज पराविद्या, कृष्ण भक्ति इज पराविद्या, एंड वर्ल्डली थिंग्स ऑल ग्रेटिफिकेशन सेंस ऑल अपराविद्या, शी इज एक्सपर्ट इन पराविद्या,
इन अपराविद्या।
हमारे पीछे पीछे 50 से गुड़ को ये लम गए, ये भी घूम रहे, ये पैसे की कोई डाइल है, मैं नहीं सोच रहा है, जैसे मेरे अंदर में तो कुछ है
नहीं, नहीं होगा
है नहीं, तो कहते ना भाव
मेरे पीछे क्यों नहीं आते।
आपने जानबूझ करके छोड़ दिया,
नहीं, नहीं, नहीं।
अपने राजनीति क्यों छोड़ दिया,
कुछ मन नहीं है उसमें, निरस हो गया हूँ,
इस इन विद्याओं में इसमें इसमें प्रवेश करो,
और उसमें लिखने में भी मेरा जो
मत लिखे
वो था,
अब ये लिखिए,
अब राजनीति का लिखना छोड़ दिया,
धर्म नीति लिखी,
मुझे कुछ रस नहीं,
गीता के विचारों को लेकर के फिर जाऊँ, इसके बाद में भागवत के विचारों में तुलसी के लेकर के भीतर में डूब, जिन खो जाती न पाइया,
एक सेकंड उसी में रस है मुझे,
बस प्रेम ढूंढिए,
मुझे कोई रस नहीं रह गया है,
कृष्ण का यदि करेंगे प्रेम आपको निश्चित होगा, मैं गारंटी करता हूँ,
तो
जहाँ कृष्ण को आराध्य बनाए और बस उनसे प्रार्थना की, वो प्रेम एकदम
बरसे,
प्रेम की परस
बरसे,
क्या है वो वर्षा जी, वर्षा प्रेम रस, वो क्या है वर्षा, वर्षे वर्षे, अरे बेटा वो नहीं, वो जो कीर्तन करते हैं ब्रज में, वर्षे वर्षे, मैंने राधा रानी जी प्रेम की वर्षा कर रही हैं, कृष्ण उसमें तृप्त हो रहे हैं, यदि किसी को प्रेम की चाहे तो वो हरिद्वार को छोड़ करके, काशी छोड़ करके, ऋषिकेश छोड़ करके, वृंदावन की शरण, यहाँ पर गोपियों ने प्रेम की गुदड़ी बना करके फेंक दी, गुदड़ी वहां पर है, गुदड़ी गुदड़ी आश्रम, गुदड़ी आश्रम गुदड़ी कुछ जगह का नाम है, उद्धव के इस ज्ञान को फाड़ फूड़ करके जमुना में फेंक दी, जमुना से जाया गया गंगा में, गंगा से चला गया वहां महासागर में, और वहां जाकर के नमक के साथ में मिल करके निकल गई, उसका आदर नहीं किया। उद्धव जी कह रहे हैं कृष्ण ने संदेश ये दिया है कि तुम उनके लिए क्यों विलाप कर रही हो, रो रही हो, वो तो तुम्हारे अंदर में इधर उधर घट घट में सर्वत्र वो है, इसलिए जब उनका तुम ध्यान करोगे तो उनका हो जाएगा। तो वो कह रही है हमने बचपन से उसको देखा, वो ब्रह्म कब बन गया, कब से ब्रह्म बना, हम तो उसे बचपन से ही जानती हैं, एक साथ में खेली है। तुम कहते हैं ध्यान की बात, हम चाहते हैं उसका ध्यान न करें और बरबस उसी की बातें याद आती हैं, और तुम कहते हैं ये ध्यान करो, हम चाहते हैं उसका ध्यान ही भूल जाएं। यदि वो हम लोगों को भूल सकता है तो हम क्यों नहीं भूल सकते, हम भूल जाना चाहती हैं किंतु एक क्षण के लिए हम नहीं भूल पाते, हमारी तो सहज समाधि उसमें लगी रहती, और तुम हमको जोर की और ध्यान की शिक्षा दे रहा है, किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए तुम्हें ज्ञान नहीं है, और प्रेम में विवल होकर के उद्धव जी देख करके चकित रहे। हरे कृष्ण प्रेम का पाठ पढ़ना है तो भागवत पढ़े कोई, उसके बिना नहीं, किंतु अनुवाद से नहीं हो,
मूल में ही पढ़ता हूँ,
मूल में किसी व्यक्ति से जो इस विषय का
हाँ।
अब से जैसे राम तुम कहाँ गया था, राम तुम कहाँ गया था, राम तुम कहाँ गया था, तीनों का अर्थ एक नहीं है, पहले में पूछ रहे हैं सिंपली जैसे तू कहाँ गया, दूसरे में कहा राम तुम कहाँ गया था क्यों गया, और तीसरे में मैं जानता हूँ ये तुम कहाँ गया था, गया क्यों, तुम गंदी जगह में गया था, तुमको नहीं जानी चाहिए। तो उसी तरह से शब्दों में उसका उसकी पोटेंसी स्वर लहरी में वो सब रहती है। तो अपने गुरु से अर्जुन ने कृष्ण से सीखा, अर्जुन जिसको बतलाएंगे उस परंपरा में जो रहेगा, गुरु अपने शिष्यों को उस परंपरा से उस चीज को बतलाएंगे। इसलिए गीता में तो वही वर्ड है किंतु उसके कई अर्थ हो सकते हैं, अब कईयों ने लिखा
80 अनुवाद तो नहीं निकल चुका।
अंडरस्टैंडिंग समथिंग लिटिल लिटिल वेरी लिटिल भारतवर्ष में जाकर के पढ़ी, यस वहाँ चली जाए और वहाँ पर वृंदावन है, न घर है न बार है न कुछ, आजकल सैकड़ों, मैं वहाँ जाऊँगा सब वहाँ से जाएंगे, कार्तिक के महीने में कम से कम तो 400-500 आदमी जाएंगे और एक महीना हमारे साथ में पड़ेगा।
ये देखिए इस बार से आप हम लोग
अब इनको भक्ति नहीं हो तो किसकी हो, पढ़े लिखे अच्छे, ये पढ़ी लिखी विदुषा कंप्यूटर में फर्स्ट क्लास, शादी नहीं कर रही, कृष्ण के साथ में हमने शादी करा दी है, इसका दुल्हा बहुत सुंदर है, अंडरस्टैंड समथिंग That you can. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna. Yesterday was my best day.
You were in Madhavi Kunja.
So much that I woke in morning 2 or 2:30 and chanting and praying so much shlok, stav, stuti, Gita, Bhagavat, everything. And whole day chanting. More than how much rounds? 128. More than that rounds. So it was my best day.
That was like 10 minutes.
Huh?
that was the 26th. In India, that was the disappearance day of Swarup Damodar and Rathiatras.
I want to speak, and I remember, I want to speak about their meaning. What Bhakti Vinod Thakur, what Pindichandra, Swarup Damodar, so many. Also there we will discuss, there we will discuss all these things.
And hair punching he also is coming.
Everything. What became of hair punching? What is hair punching?
You know.
Why? What became?
That's when they have the talks for Damodar and Srivastava.
Hair punching is on.
Means? Yes. Unless you know. What became? Why it is named? Batu.
Paksha becomes
to
beat.
To beat all the servants and to bring Jagannath
to
bring
to Krishna. Search Jagannath, yeah. Well. Yeah. But where he is hidden? In the Kunji in Vrindavan. And she became
very furious.
But Krishna is searching gopis there. So here happened. In search of gopis, he went to Sundarachalam and he was searching, and at last he met gopis there. This is Vakya. Hare Krishna, Hare Krishna. If anyone had a little taste for Harinam, hearing Harikatha, he cannot marry, he cannot go towards sense gratification. Karma, Gyan, Yoga, Tapasya, never and never. Always. Understand? Then you will be Vairagi. Having so much rag, anurag, Krishna prem, and detached with all. But those who have no taste, very hard. Hare Krishna, Hare Krishna. You want prem? But all your happiness will go away.
I have no happiness.
Hare Krishna, Hare Krishna.
Yeah,
peep. Peep, man?
Yeah,
peep.
I
guess peep. Peeping there. She showed me that, oh, this is it. Hare Krishna.
Dear Krishna was not there, so when we call.
And the devotees who are doing archan and serving Thakurji there, They are not honoring any Vaishnava or anyone. But they are in what class of Vaishnava?
Kanishtha.
What?
Kanishtha or less than Kanishtha.
Yeah.
Less than Kanishtha.
If offending, then at all not work. And if not offending, but not having so much honor, they are Kanishtha. I think they are all Kanishtha or less than Kanishtha.
Yeah.
So why is it? Hare Krishna.
Already they made.
And you are quite warm, young.
One day, any son said that
He came and wanted to meet Sri King. And he came to God and he told to God that I want to meet King. He should arrange that I can. The gods came to King and told that there is like a beggar sent and he wants to meet you. King thought that nowadays the monks are sage in their this class, they go to any rich person and beg something. So he will come and he will beg me some money, nothing else. So he was disturbed and told that, tell him that he can meet me after 4 days. They came and replied and that sent went on. And on the fourth day, on the punctual time, he returned and told that, tell King that I want to. Again King thought, oh, big problem, he will beg something. Then I will have to beg some money, but I don't want to. So he again, same reply, after 2 days he can come. So again he came, but same answer. Then the saint, he used to know some astrology. He went to Queen and asked the gods to tell him that not simply a beggar, I also know so much astrology. So I want to meet Queen to tell very important thing. And she was merciful because male has so cruel hearted, they have no so much mercy. And they
Hey, you're looking at me.
Yeah.
And then, I actually look like her.
So, easily they don't melt. But when they melt, then everything. But it is very hard for them. So Queen at once heard and at once melted. And he told that, I want to meet him. Bring him. Very short. Quickly. They brought that sage who had taken some tilak here, some tilala, and know here your sept. He has a wife, Hare Krishna chant. And he went there. And the queen saw and very quickly become very pleased. And honorably he gave a seat. And he told that, how I can serve you? What do you want? Then they said, told that, I told you first that I'm an astrologer. And I know past, future and present. So I know that King is very good, pious person. And he has those, did so many good things. He has served his father, mother. He is very kind to you, his children, and also he is so pious. He has done so many good activities. But by astrology I have known that in 15 days he will die. No one can understand him. Anyhow, and if you have no belief on me, you can arrest me and keep in my your jail. And you will see that on 15 days. I had come here at least 20 days before. I wanted to meet to Krishna and to tell Krishna that King that you died. So you should make your own arrangements, what you want. But never gave.
महाराज ये हमारी बहुत करीबी मित्र हैं
बहुत
जी आपके दर्शन के लिए आए हैं इनकी बेटियां हैं दोनों
बहुत महाराज भी कल्याण My heartly blessings to you all. Is your daughter? Elder? Then?
Abed. Abed. ऊपर बैठी है
नहीं
तो फिर हमको नीचे बैठना पड़ेगा ये मुश्किल है तो यही तो
अच्छा मैं बैठता हूँ इनके लिए गद्दी सी ले
आऊं ये गद्दी है ना
मैं ले आता हूँ और नहीं और है स्वामी
then his shoulder turned then
I was asked to tell something to your daughter and you because I'm so much indebted to you now that you have given me shelter and everything. So I wanted to give something.
Thank you for what you've given.
Then she was so much frightened and worried. He sent a message at once to King and says, at once,